बीमारी में परमात्मा याद आता है। 12 सितंबर को जैन स्थानक गुड़मंडी जलंधर में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए जनाचार्य श्री ज्ञानचंद जी महाराज साहब ने फरमाया, एक दिन बीमारी ने दौलत से कहा कि तुम कितने खुशनसीब हो, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं कितनी बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर भागता है। तब दौलत ने कहा, खुशनसीब तो तुम हो, क्योंकि तुम्हें पाकर लोग परमात्मा को याद करते हैं और मुझे पाकर अक्सर लोग भगवान को भूल जाते हैं। हमें न दौलत चाहिए और न ही बीमारी, जो आना है आए। हमें चाहिए इन सबको सहन करने की क्षमता। हम राग द्वेष से ऊपर उठकर परम शक्ति के साथ जुड़ जाएं, यही हमारा लक्ष्य हो। हम परमात्मा से दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति न मानकर यह चाहे कि हमारे में इतना अधिक सामर्थ्य पैदा हो जिससे हम इन समस्याओं से पार पा जाएं। क्योंकि समस्या से मुक्ति मांगेंगे तो एक समस्या हटेगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरे हटेगी, तीसरी पैदा होगी। हमें समस्या से मुक्ति नहीं, समस्या का समाधान करने का तरीका चाहिए। इसके लिए प्रभु की शरण में आ जाएं। परमात्मा का जीवन सुनना भी उस सामर्थ्य को पैदा करने वाला होगा। वही उपक्रम हम पार्श्वनाथ का जीवन सुनकर उनकी भक्ति करके कर रहे हैं। हर व्यक्ति के साथ तीन शरीर है। जब मृत्यु को पाते हैं तब एक औदारिक शरीर छूटता है, दो शरीर तो रहते ही हैं जिन्हें कहते हैं तेजस कार्मण, यह तो मोक्ष में जाने के एक समय पहले तक हर आत्मा के साथ लगे रहते हैं। तत्वार्थ सूत्र में सर्वस्य कहकर इस बात को समझाया गया है। जब सारे कर्म टूटते हैं तब सारे शरीर अलग हो जाते हैं। आत्मा शाश्वत शांति के लिए प्रयाण करती है, उस समय वो सीधे सिद्धि स्थल पर पहुंचाती है। इसके लिए तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्ययन में समझाया गया है, पूर्व प्रयोगाद असंगत्वाद तथा गति परिणामाच तद्गति। सारे कर्म के कट जाने से आत्मा को धक्का लगता है, जैसे बंदूक से गोली को धक्का लगता है। वह उसी एक ही धक्के से आगे बढ़ती है और लक्ष्य तक पहुंच जाती है। इसी प्रकार कर्म के छुटते ही जो धक्का लगता है उससे एक ही समय में मोक्षधाम पहुंच जाता है। असंगतवाद सारे संग बंधन कट जाने से नीचे रहने का दबाव खत्म हो जाता है। बंध छेदात बंधन के छोने से अनंत जन्मों के बंधन को तोड़ देने से भी आत्मा ऊपर उठती है। तथा गति परिणाम वैसे भी आत्मा का स्वभाव भी ऊपर उठना है। इन सब कारणों से आत्मा मोक्ष पा जाती है। अतः स्पष्ट है कि बाहर से दुख मुक्ति नहीं चाहिए, दुख मुक्ति के कारण भीतर से समाप्त होने चाहिए। वो तप जप संयम से हो सकते हैं, इसीलिए आपको तेला अट्ठाई करने के लिए समझाया जा रहा है। तप की अग्नि में कर्म जलते हैं, आत्मा ऊपर उठ जाती है, अतः तप सबसे ज्यादा जरूरी है। हर तीर्थंकर दीक्षा लेने के साथ ही तप करते थे। पार्श्व कुमार के जाने मात्र से यवनराज ने घुटने टेक दिए, यह अतिशय पुण्यवाणी का प्रभाव था। इधर प्रसेनजीत जी के निवेदन पर महाराज अश्वसेन ने कुमार को शादी के लिए समझाना शुरू किया। कम से कम जो शरण में आया है उसे निराश नहीं किया जाता है। प्रभा कुमारी यहां आ गई, उसे स्वीकार नहीं करना क्षत्रिय धर्म के अनुकूल नहीं होगा। कुमार ने आंखें बंद की तो तृतीय ज्ञान नेत्र खुल गया। उन्हें दिखने लगा कि अभी भोगावाली कर्म अवशेष है, भोगने ही पड़ेंगे। बस शादी हो गई, फिर भी उसी विरक्ति के साथ शादी के कर्तव्य को निभाया। आज्ञा और कर्तव्य पालन से यह काम भी हुआ। संतों की शरण में जाने वाला तिर जाता है। प्रभु की शरण ही ऐसी होती है। जो पार्श्व कुमार से नाग नागिन को प्राप्त हुई, उन्हें नवकार सुनाया गया। भले वो नाग को समझ नहीं आया हो, पर कुमार के मीठे वचन एवं नवकार जाप से शांति मिली। प्रभु को देखते नवकार को सुनते प्राण त्यागने से भवनपति के नाग कुमार जाति के निकाय में धर्नेन्द्र रूप देवेंद्र बने। कोई कहते हैं एक नाग ही था, कोई कहते हैं नागिन भी थी। अगर नागिन भी साथ थी तो वो पद्मावती नाम की देवी बनी। इसी तरह महाराज की बात मानने से भी तिर जाना है। एक महीने में एक बार होटल खाना खाने के लिए बहुत से लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो महीने में एक बार ही सही 5 सामायिक एक साथ करें। संत कोई कह रहे हैं तो मान लो, संत की बात मानने वाला तिर जाएगा, नहीं मानने वाला डूब जाएगा। अतः संतों की बात कभी न टाले। नाग नागिन तिर गए, उनकी आंखों में कुमार की मूरत बस गई, कानों में नवकार बस गया, दोनों चीजें प्राणों में उतर गई और आत्मा तिर गई। सर्प मरकर नाग जाति के धर्नेन्द्र पद्मावती बन गए और कमठ मेघ जाति का भवनपति देव मेघ माली बन गया। नवकार जाप के सुनने मात्र से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ गया। इसी तरह संतवाणी सुनकर आदमी तिर जाते हैं और संतों की उपेक्षा करके भव भव बधा लेते हैं। पार्श्व पुराण से विभिन्न शिक्षाएं प्राप्त हो रही हैं। श्री अरिहंतमार्गी जैन महासंघ सदा जयवंत हों।